पाठ छह अध्याय चार। आइए थोड़ा सा पुनरावलोकन करें। अब तक हमने तीन अलग अलग बलिदानों को देखा है, जिन्हें बलिदान भी कहा जाता है, ओलाह होम बलि, मिंचाह अन्न बलि और जेवा शांति बलि। प्रत्येक का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों और अवसरों पर किया जाता था। सभी में एक बात समान थी कि बलि, चाहे पशु हो या अनाज, पीतल की वेदी पर जलाई जानी थी। लेकिन यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि इनमें से किसी भी बलि का पाप करने से कोई लेना देना नहीं था, कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए प्रायश्चित से संबंधित नहीं था, बल्कि वे परमेश्वर के सामने मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव के कई पहलुओं से निपटते थे। यानी अगर कोई मनुष्य परमेश्वर के नियमों में से एक भी नहीं तोड़ सकता, तो वह मनुष्य इस तथ्य से कभी नहीं बच सकता कि बुरे व्यवहार की अनुपस्थिति ने उसके स्वभाव को नहीं बदला, और यह उसका स्वभाव ही है जो परमेश्वर के लिए उसकी स्वीकार्यता का निर्धारण करने वाला कारक है। यहोवा के लिए हमारी स्वीकार्यता हमारे व्यवहार पर उतनी आधारित नहीं थी और अभी भी नहीं है जितनी हमारी प्रकृति पर, और मनुष्य का स्वभाव हमेशा की तरह पूर्व निर्धारित था। आदम और हव्वा के समय से सभी मनुष्यों का स्वभाव परमेश्वर की नजर में बुरा था बस, और परमेश्वर पापी स्वभाव जैसा है को उतना स्वीकार नहीं कर सकता जितना कि वह अपने न्याय प्रणाली के भीतर परिणामों के बिना पापी कार्यों को स्वीकार कर सकता है। हालांकि परमेश्वर ने मनुष्य को उसके स्वाभाविक रूप से बुरे स्वभाव के लिए प्रायश्चित करने के लिए एक कानूनी साधन प्रदान किया। जब मैं कानूनी कहता हूं तो मेरा मतलब इस संदर्भ में है कि यह उन कानूनों और विनियमों के अनुसार किया गया था जिन्हें परमेश्वर ने अपनी कानूनी प्रणाली के हिस्से के रूप में जारी किया था, उसकी मिशपात। और ओलाह इन उपायों में से पहला था। ओलाह ने सबसे पहले परमेश्वर का ध्यान आकर्षित किया और फिर परमेश्वर को उपासक को अनुकूल रूप से देखने का एक साधन प्रदान किया, यानी उपासक ओलाह के माध्यम से परमेश्वर को स्वीकार्य हो गया। शब्द का इब्रानी अर्थ यह है कि उपासक को प्रभु के निकट आने की अनुमति है, प्रभु के पास जाने की। मिनचाह ने ओलाह द्वारा जो हासिल किया गया था उस पर निर्माण किया। ओलाह द्वारा उपासक को ईश्वर के लिए सुलभ और स्वीकार्य बनाने के बाद कोई भी व्यक्ति तब तक ईश्वर के पास नहीं जा सकता जब तक कि वह पहले ईश्वर को स्वीकार्य न हो, तब उपासक ईश्वर को एक उपहार अर्पित कर सकता है। यह उपहार श्रद्धांजलि की प्रकृति में अधिक है, यानी यह एक आवश्यक उपहार है, एक फिरौती, और जो अपेक्षित है उसे करके उपासक निर्धारित मूल्य का भुगतान करके यहोवा के प्रति अपना समर्पण और आज्ञाकारी होने की इच्छा व्यक्त करता है। शांति बलिदान ने ओलह और मिंचाह के कार्य को आगे बढ़ाया। शांति बलिदान ने उपासक और सर्वशक्तिमान ईश्वर के बीच एक संगति शालोम स्थापित की, जो तब तक नहीं हो सकती थी जब तक कि ए, ईश्वर ने उपासक को अपने लिए स्वीकार्य नहीं पाया, और बी, श्रद्धांजलि, जिसे फिरौती के रूप में भी देखा जा सकता है, का भुगतान नहीं किया गया। साथ में तीन बलिदान ओलाह, मिंचाह और जेवा ने मनुष्य की अंतर्निहित पापी प्रकृति के बावजूद यहोवा के साथ शांति और संगति स्थापित की और बनाए रखी। अब आइए हम यहां उभर रहे पैटर्न और सिद्धांतों पर एक नजर डालें, क्योंकि भविष्य में बलिदान प्रणाली में एक परिवर्तन होने जा रहा है और यीशु लय व्यवस्था में प्रस्तुत किए जा रहे पूर्ण प्रतीक बनने जा रहे हैं। हम पाते हैं कि पवित्र परमेश्वर के साथ व्यवहार करने का एक निर्धारित तरीका है, एक निर्धारित क्रम है जिसके द्वारा हमें यहोवा के पास जाना चाहिए, और यह कि पाप व्यक्तियों और समूहों में कई तरीकों से मौजूद है, और यह कि पाप न केवल हमारे व्यवहार में बल्कि हमारे अस्तित्व के मूल तंतुओं में मौजूद है, और किसी को भी मूलिगन नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति किसी भिन्न विधि का उपयोग करके या किसी भिन्न क्रम में परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, और कोई भी व्यक्ति अपनी स्वाभाविक रूप से जन्मी दुष्टता की स्थिति से मुक्त नहीं है, और न ही परमेश्वर के नियमों और विनियमों का पालन करने की आवश्यकता के लिए जिम्मेदारी से मुक्त है। जब हम नया नियम और मसीह के जीवन और हमारे लिए किए गए कार्य के बारे में अंशों को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान ने उन लोगों के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं सबसे पहली बात यह की कि इसने हमें विश्वासियों को परमेश्वर के लिए स्वीकार्य बना दिया। ये सब वहीं से शुरू होता है और परमेश्वर को हमारे द्वारा दिए गए उपहारों में कोई दिलचस्पी नहीं है यदि हम पहले उसके लिए स्वीकार्य नहीं हैं। यदि हम स्वीकार्य नहीं हैं तो हमारे उपहार या बेहतर हमारी फिरौती उसके लिए स्वीकार्य नहीं है, और यदि हम उसके लिए स्वीकार्य नहीं हैं और हमारे उपहार हमारी फिरौती उसके लिए स्वीकार्य नहीं है तो उसके और हमारे बीच कोई शांति नहीं हो सकती। फिर से ध्यान दें कि मसीह के माध्यम से यहोवा के लिए मनुष्य की स्वीकार्यता का मुद्दा हमारे पाप पूर्ण कार्यों और व्यवहारों के बारे में नहीं है, यह हमारे पापी स्वभाव के बारे में है। संत पौलुस अक्सर पाप की शक्ति अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं जब वह हमारे इस भ्रष्ट स्वभाव की समस्या का उल्लेख करते हैं। मुझे लगता है कि हम कभी कभी संत पौलुस द्वारा कही गई बातों को थोड़ा भ्रमित कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पाप की शक्ति अभिव्यक्ति विद्युत शक्ति या अश्व शक्ति या कितना शक्तिशाली व्यक्ति जैसे शब्दों की शक्ति को संदर्भित करती है। इसके बजाय मैं इसे आध्यात्मिक अर्थ में अधिक देखता हूं, जैसे कि प्रधानताएं और शक्तियां या अधोलोक या बुराई की शक्तियां, यानी संत पौलुस अदृश्य नियंत्रित करने वाली इकाई, एक दुष्ट क्षेत्र आध्यात्मिक रूप से अंधकारमय प्रकृति का उल्लेख कर रहे हैं जो हम सभी के भीतर रहती है जब तक कि इसे पवित्र आत्मा द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता। इसलिए जब संत पौलुस कहते हैं पाप की शक्ति, तो यह मनुष्य की स्वाभाविक रूप से पापी स्थिति के संदर्भ में है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। आप देखिए कि लैव्य व्यवस्था में बताए गए बलिदानों की तरह ही हमारे पाप पूर्ण व्यवहारों से निपटने में परमेश्वर की दिलचस्पी होने से पहले भी बहुत कुछ होना बाकी है। सबसे पहले हमारे स्वभाव से निपटना होगा, फिर हमारे व्यवहार को संबोधित किया जा सकता है। यह परमेश्वर द्वारा निर्धारित चीजों का क्रम है। विश्वासियों के रूप में हम परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं हो जाते क्योंकि हम परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करना बंद कर देते हैं। परमेश्वर हमें पहले थोड़ा सा भी साफ नहीं करते हैं, और जब हम व्यवहार के कुछ स्तर पर पहुंच जाते हैं जो काफी अच्छा होता है, तब परमेश्वर कहते हैं बिंगो, अब तुम मुझे स्वीकार्य हो। नहीं, बल्कि मसीह ओला होम बलि वह भेंट है जो हमें परमेश्वर के करीब आने की अनुमति देती है। यीशु की मृत्यु और उनका हमारा बलिदान होना आपको और मुझे पिता को स्वीकार्य बनाता है। अगर हम यीशु द्वारा किए गए कामों को केवल विश्वास करके और उन पर भरोसा करके अपनाएंगे, जब हम उनके लिए स्वीकार्य हो जाते हैं, उसके बाद ही बैप्टिस्ट इसे बचाए जाने के रूप में कहते हैं, इंजीलवादियों ने इसे फिर से जन्म लेना कहा है, तब वह अपने खिलाफ हमारे अपराधों से निपटना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने स्वभाव को पिता को स्वीकार्य बनाना होगा, और यह मसीह के बलिदान और हमारे भीतर स्वभावों के एक साथ आदान प्रदान द्वारा पूरा किया जाता है। जिस क्षण हम अपने मसीहा को स्वीकार करते हैं, हमारा पुराना स्वभाव एक नए स्वच्छ पवित्र स्वभाव से बदल जाता है, और यह पवित्र आत्मा के रूप में होता है जो हमारे भीतर वास करने के लिए आता है। अब मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग कह रहे होंगे, तो मसीह हमारे पापों, पाप बहुवचन, हमारे अपराधों, हमारे बुरे व्यवहारों के लिए भुगतान क्यों कर रहा है? हाँ, वह भी ऐसा करता है, लेकिन वास्तव में आवश्यक पहला कदम यह है कि वह हमें पिता के पास जाने की क्षमता देने के लिए कीमत चुकाता है ताकि हम पिता को स्वीकार्य हो सकें। अब मैं यह धारणा नहीं छोड़ना चाहता कि मैं ईश्वर के साथ शांति के लिए तीन चरणीय कार्यक्रम का वर्णन कर रहा हूं। यह इस तरह से काम नहीं करता है। भौतिक रूप में हम एक के बाद एक कदम उठाते हुए सिलसिलेवार तरीके से काम करते हैं। लैव्य व्यवस्था बलिदान प्रणाली इस तरह से काम करती थी। भौतिक वेदियों, भौतिक बलिदान आदि थे, इसलिए अनुष्ठान का एक क्रमिक क्रम था, और प्रत्येक अनुष्ठान प्रक्रिया के एक विशेष पहलू से निपटता था। ईश्वर अपनी योजना को तोड़ रहा था, इसे टुकड़ों में हमें दिखा रहा था एक सरल तरीके से जिसे कोई इंसान समझ सकता था। हमें सिद्धांत, पैटर्न, पाप, प्रायश्चित और क्षमा के कई पहलू दिखा रहा था और इसमें वह हमें अपनी पवित्रता और न्याय दिखा रहा था। लेव्य व्यवस्था के पहले तीन अध्यायों में हमारे पापमय स्वभाव से निपटने के बाद अब अध्याय चार में यहोवा हमारे पापमय व्यवहार से निपटना शुरू करेगा।
लेव्य व्यवस्था अध्याय चार पूरा पर है।
हालांकि हम आज अध्याय पांच तक नहीं जाएंगे और न ही हम अध्याय चार को पूरा करेंगे। हमें यह जानना होगा कि अध्याय चार और पांच एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें वे एक साथ मिलकर बलिदान के एक नए प्रकार को परिभाषित करते हैं। विद्वान जो बड़े बड़े शब्दों से प्यार करते हैं, लेव्य व्यवस्था चार और पांच के दो बलिदानों को जब एक साथ एक विशेष वर्ग या प्रकार के रूप में लिया जाता है, प्रायश्चित कहा जाता है। इसका मतलब है कि उन्हें पाप के कृत्यों के लिए प्रायश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। वास्तव में अध्याय चार के बलिदान के लिए सामान्य शीर्षक और अक्सर अध्याय पांच के लिए भी पाप की बलि है, लेकिन हम उस शीर्षक का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि यह वास्तव में उस उद्देश्य के लिए बुरा है जिसका उद्देश्य है।
इब्रानी में लेव्य व्यवस्था अध्याय चार के बलिदान को हत्ता अथ कहा जाता है और इसका अर्थ है पापी को शुद्ध करने के उद्देश्य से किया जाने वाला बलिदान, ताकि वह यहोवा के सामने अपने अपराध से मुक्त हो सके, क्योंकि इस मनुष्य ने यहोवा के विरुद्ध अपराध किया है।
दूसरे शब्दों में यह उस कार्य की बात नहीं है बल्कि उपासक की प्रदूषित स्थिति है जो उसके द्वारा किए गए अपराध के कारण उत्पन्न हुई है। यह माना जाता है कि उपासक अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध या स्वच्छ अवस्था में था, कि वह पापों के अपराध से अप्रभावित था, लेकिन अब उसने कुछ ऐसा किया जो परमेश्वर की पवित्रता के विरुद्ध था और इसके बारे में कुछ किया जाना था। अब जब उसने यह अपराध किया था तो यह अब परमेश्वर के सामने शुद्ध नहीं था और इसलिए उसे शुद्ध होने की आवश्यकता थी। इसलिए तोरह क्लास में हम लेव्य व्यवस्था चार के इस बलिदान को शुद्धिकरण भेंट कहने जा रहे हैं,
ताकि आप यह न सोचें कि मैं शब्दों को पुनर्परिभाषित कर रहा हूं और अपना नया धर्मशास्त्र ग्याहो रहा हूं। समझ लें कि पाप की बलि का सामान्य अंग्रेजी अनुवाद, जब इब्रानी शब्द हत्तात का अनुवाद किया जाता है, शब्द का सीधा अनुवाद नहीं है, बल्कि इसे एक कार्यात्मक अनुवाद कहा जाता है। इसका मतलब है कि हत्तात शब्द के लिए अनुवाद जैसी कोई चीज नहीं है। हत्तात का किसी अन्य भाषा में कोई समतुल्य शब्द नहीं है, बल्कि जो कुछ भी किया जा सकता है वह हत्तात के उद्देश्य को फिर से बताना है, अंग्रेजी में इसका कार्य या जो भी भाषा हो। चूंकि हत्तात तकनीकी रूप से किए गए अस्वीकार्य व्यवहार के लिए प्रायश्चित करने के लिए एक भेंट नहीं है, इसलिए इसे पाप की बलि कहना हमें उद्देश्य के बारे में गलत धारणा देता है। एक कार्यात्मक पहलू से हत्तात उस उपासक की स्थिति को सुधारता है जिसने पाप किया है, यह उस उपासक को शुद्ध करता है।
इसलिए हत्तात के कार्य का बेहतर अनुवाद यह है कि यह एक शुद्धिकरण की पेशकश है। पद एक यह स्पष्ट करके शुरू होता है कि जो होने वाला था वह अभी भी यहोवा की मूसा को दी गई आज्ञा थी। यह अधिकार रखने वाले लोगों द्वारा की गई घोषणा नहीं थी, यह परमेश्वर की वाणी थी। और पद दो हमें बताता है कि हत्तात का संबंध अनजाने में किए गए पाप से उपासक को शुद्ध करने से है, और हम इस अनजाने पहलू पर चर्चा करेंगे जो अध्याय चार में पाप के अनजाने आकस्मिक होने के विचार की ओर अधिक झुकता है। जब हम अध्याय पांच में आते हैं तो थोड़ा और। अब मैंने कुछ मिनट पहले लेव्य व्यवस्था के पहले तीन बलिदानों में स्थापित किए जा रहे सिद्धांतों और पैटर्न के बारे में बात की थी और कैसे ये बाकी पवित्र शास्त्र यहां तक कि मसीह की सेवकाई और उद्देश्य तक ले जाएंगे। हत्तात चौथा बलिदान, पाप की प्रकृति, इसके प्रभावों और परमेश्वर की पवित्रता पर इसके कारण होने वाले हमले के बारे में एक और पहलू लाता है। जब हम लेव्य व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो हम जो कर रहे होते हैं उसे मैं कहता हूं, आप में से जो लोग पहले इस लोक ज्ञान से धन्य नहीं हुए हैं उन्हें मैं समझाता हूं, यदि आपको कोई बहुत बड़ी चट्टान, एक विशाल शिलाखंड मिले और आप इसकी जांच करना और इसका चूर्णन करना चाहते हैं तो आपको एक बिंदु से शुरू करना होगा और इसकी परिधि के चारों ओर चलना होगा। जैसे ही आप उस चट्टान के चारों ओर चलते हैं, यदि आप चट्टान के चारों ओर घूमना रुकते हैं और नोट करते हैं कि यह वास्तव में कैसा दिखता था, इसका रंग, इसकी सतह, इसका स्पर्श, क्या इसके किनारे नुकीले थे या अधिक घुमावदार थे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और चट्टान को थोड़ी अलग स्थिति से देखेंगे, वैसे वैसे इसका स्वरूप भी बदलेगा। उस चट्टान के सभी भौतिक पहलुओं की उचित और पूरी समझ पाने के लिए आपको इसे कई स्थितियों और कोणों से देखना होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चट्टान एक यादृच्छिक आकार की है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां रुकते हैं और इसे देखते हैं। और अगर आप केवल एक ही स्थान पर खड़े होने और चट्टान का वर्णन केवल एक कोण से करने का फैसला करते हैं तो आपको उस चट्टान की समग्र तस्वीर और प्रकृति का एक बहुत ही विकृत और अधूरा दृश्य मिलेगा। भले ही आप जिस सटीक बिंदु से खड़े हैं, आप निश्चित रूप से सटीक रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं। पाप और प्रायश्चित पर चर्चा करना भी ऐसा ही है। हमारे साउंड बाइट युग में हम सोचते हैं कि हम लगभग हर धर्मशास्त्रीय सिद्धांत को मुट्ठी भर ईसाई क्लिच और चतुर कथनों में समेट सकते हैं और ये कहावतें गलत नहीं भी हो सकती, लेकिन अक्सर वे इतनी सरल होती हैं कि बेकार लगती हैं। इसलिए लैव्य व्यवस्था हमें पाप और प्रायश्चित की चट्टान के इर्द गिर्द एक लंबा रास्ता तय कराती है, कई जगहों पर इसके कई पहलुओं की जांच करने के लिए रुकती है और हम पाएंगे कि पाप एक जटिल मुद्दा है और शायद यह और भी गंभीर है और हमारे जीवन में जितने रूपर्वों में मौजूद है उसे कहीं ज्यादा हमने कभी सोचा है। आप देख सकते हैं कि पाप के साथ मुख्य समस्या यह है कि यह मनुष्य और परमेश्वर के बीच के रिश्ते को नष्ट कर सकता है। पाप उस वाचा के रिश्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा प्रस्तुत करता है जिसे परमेश्वर ने बनाया था ताकि मनुष्य उसके साथ शांति से रह सके, और पाप अपने साथ ऐसे परिणाम लाता है जो अक्सर अनपेक्षित अप्रत्याशित होते हैं और कभी कभी उनका कोई समाधान नहीं होता। मनुष्य के लिए सबसे भयावह परिणामों में से एक यह है कि पाप परमेश्वर के क्रोध को भर का सकता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं कई ईसाइयों से मिला हूं जिन्होंने कुछ ऐसा कहा है, मैं परमेश्वर के क्रोध में विश्वास नहीं करता, या अधिक बार, मैं परमेश्वर के क्रोध के बारे में सुनना नहीं चाहता। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर न्याय में अपना क्रोध हुंडेलता है या कि वह प्रेम का परमेश्वर नहीं है और न्याय, तो मुझे तुम्हारे लिए डर है क्योंकि तुम पाप की गंभीर प्रकृति और उसके परिणामों को नहीं समझते। जब तक हम लैव्य व्यवस्था को पूरा नहीं कर लेते तब तक तुम देखोगे कि परमेश्वर पाप को कितनी गंभीरता से लेता है, और यह कोई सुंदर तस्वीर नहीं है। लैव्य व्यवस्था में बलिदान की यह चौथी श्रेणी हत्तात उस व्यक्ति की खतरनाक स्थिति से संबंधित है जिसने पाप किया है। ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने पाप किया है उसे इतने शक्तिशाली विष से जहर दिया गया है कि उसके वचने की संभावना बहुत कम है। हत्तात शुद्धिकरण बलिदान उस जहर को बेअसर करने के लिए मारक है। व्यक्ति को जहर कैसे मिला और विष की सटीक प्रकृति गौण है, बशर्ते कि यह अनजाने में हुआ हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को वापस अच्छे स्वास्थ्य में लाया जाए, उस व्यक्ति पर उस जहर के दुर्बल करने वाले प्रभावों को हटाया जाए, उस व्यक्ति को वापस अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की स्थिति में लाया जाए ताकि यहोवा के साथ उसका रिश्ता नष्ट न हो। क्या यह आपको समझ में आता है? हत्तात बलिदान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बचाव अभियान है जो व्यक्ति को ईश्वर के सामने उसकी खतरनाक स्थिति से बचाने के लिए है जो आध्यात्मिक रूप से घातक हो सकती है। और हम पाते हैं कि पाप का मामला इतना गंभीर है कि इस बात पर निर्भर करते हुए कि कौन अपने अपराधों के कारण इस पापी अवस्था में आता है और इसराइल के समुदाय में अपराधी की स्थिति क्या है, अलग अलग अनुष्ठान प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। यदि महायाजक पाप करता है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है, एक आदिवासी नेता के लिए दूसरी, आबादी के एक आम सदस्य के लिए दूसरी, और यहां तक कि जब पूरा राष्ट्र यहोवा के विरुद्ध अपराध करता है तो भी एक अलग मारक है।
आइए अध्याय 4 में बताए गए इसराइली समाज के प्रत्येक स्तर पर संक्षेप में नजर डालें और प्रत्येक के लिए उपयुक्त विभिन्न शुद्धिकरण प्रक्रियाओं पर चर्चा करें। इस अध्याय में इब्रानी समाज के भीतर पद और स्थिति के महत्व का क्रम स्थापित किया गया है। यह महायाजक है, फिर सारा इसराइल, पूरी मंडली, फिर एक आदिवासी नेता और अंत में एक आम व्यक्ति। इसलिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण होने के नाते महायाजक को पहले संबोधित किया गया। कुछ बाइबल संस्करण पद 3 में अभिषिक्त पुजारी शब्द का उपयोग करेंगे। यह महायाजक को संदर्भित करता है क्योंकि महायाजक एकमात्र पुजारी है जिसे अभिषेक के तेल से अभिषिक्त किया जाता है। चूंकि महायाजक ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है, इसलिए उसका पाप करना एक भयानक बात है और न केवल उसे बल्कि पूरे इसराइल राष्ट्र को भी खतरे में डालता है। जब महायाजक ईश्वर के विरुद्ध अपराध करता है तो यहां स्थापित सिद्धांत यह है कि इसका प्रभाव पूरे इसराइल पर पड़ता है।
अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि लेव्य व्यवस्था 4 के संदर्भ में महायाजक के ये पाप आवश्यक रूप से बुरे व्यवहार के व्यक्तिगत पाप नहीं थे। आम तौर पर वे महायाजक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में की गई गलतियां थीं। ऐसे अन्य बलिदान भी थे जो उसके व्यक्तिगत पापों से निपटते थे। चूंकि महायाजक के कर्तव्य मुख्य रूप से लोगों की ओर से परमेश्वर द्वारा निर्धारित विभिन्न अनुष्ठानों को पूरा करना था, इसलिए जब महायाजक ने गलती की तो उसने लोगों की ओर से गलती की और इसलिए लोगों को भी उतना ही दोषी ठहराया जितना उसने किया।
परिणाम स्वरूप पुजारी को बलि के लिए सबसे ऊपर रखे जाने वाले पशु एक परिपक्व बैल का उपयोग करना पड़ा। ओलाह में होम बलि में बलि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पशु का चयन अलग अलग होता था। बैल से लेकर पक्षी तक, इसका किसी व्यक्ति के पापी स्वभाव की सीमा से कोई लेना देना नहीं था। इसका संबंध इस बात से था कि व्यक्ति उचित रूप से कितना खर्च कर सकता है। महंगा और असाधारण होता है, जबकि पक्षी सबसे कम खर्चीला होता है।
यहां हत्तात में यह कुछ अलग है। शुद्धिकरण बलिदान में पापी व्यक्ति का इजरायली समाज में जितना उच्च स्थान होता था, जानवर उतना ही महंगा और बड़ा होता था। इसलिए महायाजक ने हमें सबसे बड़ा और सबसे महंगा पशु, एक 3 वर्षीय बैल, भेंट चढ़ाने का दायित्व सौंपा। जैसे होम बलि में पशु को तंबू प्रांगण में लाया जाना चाहिए और वहां उपासक, इस मामले में महायाजक सेमिका हाथों को रखना करता है। और याद रखें कि हाथ रखने से आम तौर पर उपासक से अपराध को पशु पर स्थानांतरित करने का विचार जुड़ा होता है, लेकिन इसके साथ अक्सर उस विशेष पशु को आधिकारिक रूप से इस विशेष उपासक की बलि के रूप में नामित करने की धारणा भी जुड़ी होती है। फिर महायाजक पशु को मारता था और उसके रक्त को एक अनुष्ठान पात्र में इकट्ठा करता था।
रक्त को पवित्र स्थान बैठक के तंबू में ले जाया गया और महायाजक ने अपनी उंगली बैल के रक्त में डुबोई और इसे 7 बार परोखेत पर्दा या घूंघट पर छिड़का, जो पवित्रतम स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता है। आइए स्पष्ट करें, महायाजक पवित्र स्थान में खड़ा था, न कि परम पवित्र स्थान में जब उसने ऐसा किया। अब यह विशेष रक्त अनुष्ठान असामान्य था। यह वास्तव में केवल एक बार हुआ था, वह था योम किप्पुर, प्रायश्चित के दिन। लेकिन योम किप्पुर पर महायाजक वास्तव में परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। इसके बाद महायाजक ने पवित्र स्थान में पराए खेत के बगल में स्थित धूप की वेदी के सींगों पर थोड़ा सा रक्त लगाया। शेष रक्त को पीतल की वेदी के पैर में डाला गया, न कि अब तक जो निर्धारित किया गया था, वह यह था कि पशु के रक्त को वेदी के चारों ओर छिड़का जाना था।
इसके बाद बैल को काटा गया, उसके कुछ आंतरिक अंगों से चर्बी निकाली गई और उसे पीतल की वेदी पर जलाया गया। यहीं पद 12 में हमें सामान्य बलि अनुष्ठान से काफी हद तक अलग हटकर कुछ देखने को मिलता है। बैल के बचे हुए हिस्से को न तो खाया जाता है, न ही उसे पुजारियों को खाने के लिए दिया जाता है, न ही उसे पीतल की वेदी पर जलाया जाता है। इसके बजाय उसे शिविर के बाहर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाया जाता है और वहां उसे आम लकड़ी की आग पर जलाया जाता है और राख को शिविर के बाहर स्थित एक विशेष राख के ढेर पर रखा जाता है। अब अगर हम सावधान नहीं हैं तो मूल इब्रानी को ग्रीक, फिर ग्रीक को लैटिन, फिर लैटिन को अंग्रेजी में अनुवाद करने की समस्याओं के कारण कुछ महत्वपूर्ण विवरण हमसे छूट सकते हैं, जिस तरह से हमारी अधिकांश बाइबलों का अनुवाद हुआ है। पद 10 में हमें बताया गया है कि बैल के कुछ हिस्से मुख्य रूप से चर्बी पीतल की वेदी पर जलाए जाते हैं। जलाए जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इब्रानी शब्द कतर है, और कतर एक ऐसा शब्द है जो जलाने की क्रिया को इंगित करता है, जो बलि की भेंट को धुएं में बदल देता है, एक ऐसा धुआं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल पवित्र स्थान में धूप की वेदी पर धूप जलाने के लिए भी किया जाता है। विचार यह है कि इस तरह जलाना एक सकारात्मक बात है, एक पवित्र प्रक्रिया है। लेकिन पद 12 में जहां बैल के अवशेषों को शिविर के बाहर एक स्थान पर ले जाया जाता है और आम लकड़ी की आग पर जला दिया जाता है, जलाए जाने के लिए इस्तेमाल किया गया इब्रानी शब्द अलग है, और यह शब्द पद 10 में जलाने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द के लगभग विपरीत अर्थ रखता है। इस उदाहरण में जलाने का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द सरफ है, और सरफ का मतलब है आग से नष्ट करना, जलाकर नष्ट करना। विचार यह है कि आप किसी ऐसी चीज से छुटकारा पा रहे हैं जो अवांछनीय और अशुद्ध है। उदाहरण के लिए सरफ का इस्तेमाल कचरे को जलाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए कतर पवित्र जलाने से संबंधित है, सरफ जलाने से विनाश से संबंधित है। कतर रचनात्मक है, सरफ विनाशकारी है। पीतल की वेदी पर जो जलाया जाता है वह पवित्र और रचनात्मक है। जो शिविर के बाहर आम लकड़ी की आग पर जलाया जाता है वह भ्रष्ट और विनाशकारी है। और अगर शब्द सा रा एफ आपके कानों को जाना पहचाना लगता है तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यह उस प्राणी का मूल शब्द है जिसे मूसा ने जंगल में खंभे पर लटकाया था, एक सेराफ सेराफ, और आमतौर पर इसे एक उग्र ड्रैगन या एक उग्र सांप कहा जाता है, जलने जैसा उग्र। हम यह भी पाएंगे कि बाइबल में सेराफ को परमेश्वर की सेवा में वर्णित किया गया है, लेकिन ध्यान दें कि साराफ और सेराफ के लिए मूल शब्द विनाश के इर्द गिर्द घूमता है, और शायद यही आत्मा के उद्देश्यों में से एक को समझने की कुंजी है, जिसे बाइबल सेराफ, हम इसका अनुवाद सेराफिम के रूप में करते हैं, कहते हैं, जो परमेश्वर के सिंहासन कक्ष की रखवाली करता है। सेराफिम का काम उन सभी को पूरी तरह से नष्ट करना है जो स्वच्छ और शुद्ध नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम शिविर के बाहर लाल बछिया की बलि में बैल को जलाने की इस प्रथा से जुड़े एक पहलू पर भी नजर डालेंगे। अब ज्यादातर लोगों ने लाल बछिया शब्द सुना होगा, और कुछ लोग तो यह भी जानते हैं कि यहूदी अभी एक बेहतरीन लाल बछिया की तलाश में हैं, क्योंकि यरूशलेम में नए मंदिर के निर्माण के लिए इसकी जरूरत पर ने वाली है। मैं अभी इस पर विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन ध्यान दें कि हत्तात और लाल बछिया की बलि के बीच मुख्य अंतर यह है कि उच्च पुजारी को शुद्धिकरण की बलि के लिए नर बैल का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि लाल बछिया, जैसा कि आप नाम से बता सकते हैं, कि बलि में मादा गाय बछिया की बलि शामिल होती है। हालांकि दोनों ही मामलों में जानवर के अवशेषों को कैंप के बाहर जलाना जरूरी है, इसलिए यह साराफ प्रकार का जलाना है, यानी यह विनाशकारी जलाना है। तो कैंप के बाहर होने का क्या मतलब है? वास्तव में यह बिल्कुल शाब्दिक है। परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि इसराइलियों को जंगल के तंबू के चारों ओर डेरा डालना था, और इस डेरे के क्षेत्र को इसराइल का शिविर कहा जाता है। इस क्षेत्र को स्वच्छ माना जाता है, यानी शुद्ध के रूप में स्वच्छ, स्वच्छ के रूप में स्वच्छ नहीं, हालांकि स्वच्छता शुद्धता का एक आवश्यक हिस्सा थी। अब मूसा और तंबू के युग में इसराइल के शिविर की सबसे बाहरी सीमा कहां थी, यह हमें नहीं बताया गया है, लेकिन यह कहीं परे रहा होगा जहां इसराइल के 12 गोत्रों के तंबू खड़े किए गए थे। सैकड़ों साल बाद जब पोर्टेबल तंबू, जो जंगल का तंबू था, ने मंदिर नामक एक स्थायी लकड़ी और पत्थर की इमारत को रास्ता दिया तो यह निर्धारित करने के लिए एक वास्तविक माप स्थापित किया गया कि अंदर क्या है और इसलिए शिविर के बाहर क्या है। माप हमेशा गोलाकार होता था और वृत्त का केंद्र परम पवित्र स्थान होता था। इसलिए यीशु के समय में इसराइल के शिविर का क्षेत्र पवित्रतम स्थान के चारों ओर 2000 हाथ की परिधि में स्थापित किया गया था, लगभग 3000 फीट। इसका मतलब है कि मंदिर पर्वत पर पवित्रतम स्थान के चारों ओर 3000 फीट की परिधि में एक काल्पनिक घेरा बनाया गया था। उस घेरे के अंदर की हर चीज शिविर के अंदर थी और उससे परे की हर चीज आमतौर पर शिविर के बाहर थी। अब जो मैंने अभी आपको बताया वह मिशनाह में अच्छी तरह से प्रलेखित है और उसका एकमात्र विवादित हिस्सा एक क्यूबिट की सटीक परिभाषा है जो संस्कृति से संस्कृति में भिन्न होती है, लेकिन आम तौर पर यह 18 इंच के आसपास होती थी। मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात इब्रानियों के लेखक, जिन्हें आमतौर पर संत पौलुस माना जाता है लेकिन यह बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, द्वारा की गई टिप्पणी है जो उस सटीक स्थान से संबंधित है जहां मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। अपनी बाइबल में इब्रानियों 13:10-13 खोलिए। इब्रानियों 13:10-13 पढ़ें। ध्यान दें कि पौलुस या इब्रानियों का जो भी लेखक है एक सादृश्य प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि जिस प्रकार महायाजक पवित्र स्थान में पाप बलि के रूप में लहू की भेंट चढ़ाता है, हत्तात वह भेंट जिसका अध्ययन हम लैव्य व्यवस्था 4 में कर रहे हैं, परंतु बैल के शरीर को शिविर के बाहर जलाया जाता है, उसी प्रकार यीशु को भी शिविर के बाहर ही नष्ट किया गया था और इसलिए हमें भी वहीं पर उसके साथ शामिल होना चाहिए। अब C.J.B. समेत कुछ बाइबलें पद 12 में गेट के बाहर कहती हैं। जिस गेट का जिक्र किया जा रहा है वह संभवतः पूर्वी गेट रहा होगा। यीशु के दिनों में पूर्वी गेट के ठीक बाहर एक डबल डेकर पुल था जो नीचे घाटी को पार करता था और मंदिर पर्वत को जैतून के पहाड़ से जोड़ता था। इसी पुल के ऊपर से लाल बछिया और बलि का बकरा संबंधित अनुष्ठानों के लिए ले जाया जाता था और जिसके ऊपर शुद्धिकरण की भेंट हत्तात के लिए बैल के अवशेषों को ले जाया जाता था। आप देखिए कि अब तक तोरह के हमारे अध्ययन में हमने दो वेदियों की पहचान की है जिनका इस्तेमाल समग्र बलि प्रणाली के हिस्से के रूप में किया जाता था। स्वर्ण धूप वेदी जो पवित्र स्थान के अंदर थी और पीतल की वेदी जो मंदिर के दरवाजे के ठीक बाहर थी वास्तव में एक तीसरी वेदी थी जिसका नाम मिफकाद वेदी था। यह मिफकाद वेदी जैतून पर्वत की छोटी के निकट इसराइल के शिविर की सीमा के बाहर स्थित थी और यहीं पर लाल बछिया को जलाया गया था, बेल के अवशेषों को राख में बदल दिया गया था और इसलिए इब्रानियों के लेखक के अनुसार यह संभवतः वह मिफकाद वेदी थी जहां ईसा को क्रूस पर चढ़ाया गया था। इब्रानियों 13:13 में कहा गया है कि मसीह की मृत्यु शिविर के बाहर हुई। अब यदि कोई परम पवित्र स्थान के चारों ओर 3000 फुट का घेरा खींचता है तो इसका मतलब है कि मसीह उस घेरे के भीतर कहीं भी नहीं मरा होगा, अन्यथा वह शिविर के अंदर ही रहा होगा और पारंपरिक स्थान जहां मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था वह शिविर के अंदर ही पड़ता है। यहां मुद्दा यह है और इसमें दो बिंदु हैं। पहला, मसीह को संभवतः जैतून के पहाड़ पर सूली पर चढ़ाया गया था क्योंकि इसराइल का शिविर जैतून के पहाड़ की ढलान पर समाप्त हो गया था और इसलिए शिविर के बाहर था। और हमें सुसमाचारों में बताया गया है कि जिन लोगों ने मसीह की मृत्यु को देखा जब उन्होंने अपनी आत्मा त्याग दी तो भूकंप का अनुभव करने पर उन्होंने मुड़ कर देखा और मंदिर में पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। खैर, चूंकि वह बाहरी पर्दा पूर्व की ओर जैतून के पहाड़ की ओर था इसलिए वे लोग वास्तव में पर्दा फटते हुए देखने के लिए एकमात्र स्थान जैतून के पहाड़ पर ही हो सकते थे। कहा, मेरे परमेश्वर तुमने मुझे क्यों त्याग दिया, मुझे छोड़ दिया। पिता एक पल के लिए यीशु से दूर चले गए और परमेश्वर का क्रोध जो पूर्ण विनाश है, पूर्ण विनाश वस्तुतः कहीं और, यह उनकी दृष्टि से बाहर होता। दूसरा बिंदु यह है कि शिविर के बाहर यीशु के मरने में बहुत महत्व है।
क्योंकि ये हमें बताता है कि मसीह की मृत्यु महायाजक के लिए शुद्धिकरण बलिदान के समान थी, और हमें कई बार बताया गया है कि मसीह हमारे महायाजक हैं। शिविर के बाहर बलिदान को नष्ट करने की यह प्रक्रिया केवल तभी इस्तेमाल की जाती श्री जब महायाजक पाप से भ्रष्ट हो जाता था। ये किसी आदिवासी नेता या आम लोगों पर लागू नहीं होता था, और इस विशेष बलिदान को नष्ट किया जाना था। यीशु ने क्या मसीह पर परा? ताकि वह हमारे बजाय सह सके। अब मैं यीशु की मृत्यु के स्थान के बारे में बिल्कुल भी हठधर्मी नहीं है। इब्रानियों के लेखक ने सुराग दिए हैं, पूर्ण प्रमाण नहीं, लेकिन यह दर्शाता है कि तोरह और लैव्य व्यवस्था बलिदान प्रणाली का अध्ययन करना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये कहना कि मसीह हमारे लिए बलिदान था सच है, लेकिन किस तरह का बलिदान, कई तरह के बलिदानों में से कौन सा? जब इब्रानी में कहा जाता है कि मसीह को पाप की बलि के रूप में चढ़ाया गया था, तो यह एक खास तरह का बलिदान है। हत्तात और हत्तात का एक बहुत ही खास उद्देश्य होता है। यह कोई सामान्य या सार्वभौमिक तरह का बलिदान नहीं है। याद रखें कि जिन लोगों ने मूल रूप से नया नियम और मसीह की मृत्यु का विवरण लिखा था, वे यहूदी थे। वे बलिदान प्रणाली की पेचीदगियों को अच्छी तरह समझते थे, क्योंकि यह उनके लिए सामान्य ज्ञान था। तो क्या पौलुस ने यीशु के शिविर के बाहर मरने के बारे में जानकारी को सिर्फ इसलिए शामिल कर दिया क्योंकि यह नाटकीय था, या उसने इस बारे में नहीं सोचा कि इसका क्या मतलब है? नहीं, यह जानकारी किसी भी यहूदी के लिए काफी सार्थक थी। वैसे भी मैं यह धारणा नहीं देना चाहता कि हत्तात, शुद्धिकरण, बलिदान, बलिदान प्रणाली का एकमात्र तत्व था जिसे यीशु ने पूरा किया, लेकिन निश्चित रूप से शुद्धिकरण बलिदान भाग इब्रानियों की पुस्तक में सबसे आगे और केंद्र में था, और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हम अगले सप्ताह अध्याय 4 समाप्त कर देंगे।